हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। कार्तिक के महीने में आज के पावन एकादशी के अवसर पर बुधवार के कार्यक्रम में दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को जो धर्म ज्ञान देना प्रारंभ किए, उसमें विभिन्न प्रकार से भगवान अर्जुन का जो क्षत्रिय धर्म है उसे पुनः जागृत करना चाहते हैं। और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के अंदर एक क्षत्रिय अभिमान तो था, हर एक क्षत्रिय में होता है। और भगवान, अब हमने जो पिछले हफ्ते भी श्लोक लिया और आज भी जो हम लेंगे, जिसमें अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम यदि युद्ध नहीं करोगे और युद्ध पलायन करोगे, छोड़कर जाओगे इस रणभूमि को, तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी और लोग तुम्हें डरपोक या भयभीत मानेंगे। और यही आज का श्लोक है जिसकी शुरुआत भगवान करते हैं भय इस शब्द से। भयात्रणादुपरतम् मम्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात्रणादुपरतम् मम्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात्रणादुपरतम् मम्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जितने सारे महारथी विपक्ष में उपस्थित हैं, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य इत्यादि, ये सारे महारथी अर्जुन तुम्हें डरपोक कहेंगे। तुम ये मत समझना कि ये कहेंगे कि अर्जुन कितना कृपालु है, अर्जुन कितना दानवीर है, कि अर्जुन ये पूरा राज्य हमें देने के लिए वो रणभूमि छोड़ने के लिए तैयार। ऐसा कोई गुणगान तुम्हारा नहीं करने वाला, तुम इस भ्रम में मत रहना अर्जुन। इसलिए भगवान कह रहे हैं बहुमत, मुझे यदि तुम पूछो कि इन सब का बहुमत क्या होगा, तो यही होगा कि ये तुम्हें भयात्रणात् उपरतम्, डर के जो भाग गया रण से, इस प्रकार से तुम्हें ये बुलाएंगे। और भूत्वा यास्यसि लाघवम्, और कहेंगे कि लाघवम्, इसे कहते हैं कि लघु, समथिंग इनसिग्निफिकेंट, कि तुम्हारी जो भी इतनी महान ख्याति अब तक, बचपन से लेके अब तक तुमने स्थापित की है, वो पूरी इतनी महान ख्याति लाघवम बन जाएगी। तो आज का श्लोक अर्जुन के जो क्षत्रिय अभिमान को हिला देने वाला श्लोक है। तो आज की हमारी चर्चा रहेगी पिछले श्लोकों से आज के श्लोक का संबंध। भगवान महारथी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी महारथी अर्जुन को डरपोक कहेंगे। उपरत इस शब्द का अर्थ क्या है, अर्जुन के तीन पूजनीय कुरुश्रेष्ठ जिनको उल्लेख भगवान इनडायरेक्टली कर रहे हैं और भगवान के द्वारा इस श्लोक में छिपा संदेश। तो यदि हम पिछले श्लोकों को लें, पिछले दो श्लोकों को यदि हम लें, तो भगवान पिछले दो श्लोकों से अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, इसे याद है? पिछले दो श्लोकों से 33वां श्लोक और 34वां श्लोक भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? युद्ध नहीं करने के दोष। प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान को क्या समझा रहे थे? युद्ध करने के दोष। तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि अर्जुन का दृष्टिकोण दोष के प्रति कैसा था प्रथम अध्याय में, और ये द्वितीय अध्याय में जो पिछले दो श्लोक हमने लिए और आज का भी श्लोक, भगवान ये बोल रहे हैं विपरीत दृष्टिकोण की, युद्ध नहीं करने के दोष तुम्हें जो लगेंगे अर्जुन वो तुम सर्वप्रथम जानो। तो इसलिए हम यदि पिछले दो श्लोकों का सारांश लें तो ये चार दोष भगवान ने अर्जुन के सामने प्रस्तुत किए। अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा, अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी, अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, और पिछले हफ्ते हमने जो श्लोक लिया था भगवान ने एक और दोष, चौथा दोष ऐड कर दिया। अर्जुन को कौन सी अपकीर्ति प्राप्त होगी? कभी ना खत्म होने वाली अव्यय अपकीर्ति अर्जुन को प्राप्त होगी। तो अर्जुन को अब इन चार दोषों को सुनाने के पश्चात आज का जो श्लोक है 35वां श्लोक, आज के श्लोक में भगवान पांचवा दोष बता रहे हैं। कौन सा है पांचवा दोष? कि तुम्हारी केवल अव्यय अपकीर्ति नहीं होगी अर्जुन, बल्कि सारे जो महारथी उपस्थित हैं वो न केवल तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, बल्कि एक क्षत्रिय के लिए जो सबसे बड़ी गाली होती है डरपोक कहीं का, है ना, एक क्षत्रिय के लिए जो सबसे बड़ी गाली होती है, यदि कोई क्षत्रिय को कहे कि कितना नृशंस है तुम, क्षत्रिय के लिए वो कॉम्प्लीमेंट है, हाउ रूथलेस यू आर, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यदि क्षत्रिय को कहे कितना दयालु है, तो वैसे ही डरपोक। तो इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं ये जो पांचवा, तो पिछले श्लोकों से संबंध क्या है आज के श्लोक का, कि अब तक दो श्लोकों तक 33वें और 34वें श्लोकों तक भगवान ने चार दोष युद्ध नहीं करने के अर्जुन के सामने प्रस्तुत किए, और आज के श्लोक में पांचवा दोष। तो यदि हम पिछला श्लोक लें और आज का श्लोक लें, तो ये जब भगवान ने कहा महारथा, महारथी सभी अर्जुन को डरपोक कहेंगे, तो इसे हम इस प्रकार से समझें कि अब तक जब अपकीर्ति की चर्चा भगवान कर रहे थे, जैसे पिछले श्लोक में जो किया भगवान, तो मानो अर्जुन ये प्रश्न पूछे कि मुझे क्या परवाह है, सामान्य लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मैं क्यों परवाह करूं। बोलते हैं ना, कुत्ते भौंकेंगे कारवां चलता रहेगा। तो यदि सामान्य लोग मेरी अपकीर्ति करें, व्हाई शुड आई केयर। तो भगवान ने अर्जुन के चेहरे पर वो हाव भाव समझ लिया कि अर्जुन मेरे जो अपकीर्ति का दोष मैंने अर्जुन के सामने प्रस्तुत किया है, तो अर्जुन ये तर्क सामने रख रहे हैं कि वो अपकीर्ति तो सामान्य लोग करेंगे ना। यहां पर आज के श्लोक में भगवान ने कहा न केवल सामान्य लोग, महारथा, बड़े बड़े जो महारथी उपस्थित हैं, क्योंकि अर्जुन का यह मानना था कि जो जन साधारण है उनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है ना समझने के लिए कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा त्यागी है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं जब कोई इस्कॉन में धीरे धीरे आना शुरू करता है तो इस्कॉन में जो सिद्धांत बताया जाता है कि हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं, तो शुरुआत में बताया जाता है जीवेरे स्वरूप होई कृष्ण र नित्य दास, ये बताया जाता है। और फिर जब कुछ समय हो जाता है आते हुए, तब फिर सुनने को आता है कि न केवल दास, दास अनुदास। फिर और समय पश्चात न केवल अनुदास, अनु अनु अनुदास, दासानु 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 दास। इसे एक राधानाथ महाराज से एक भक्त की दीक्षा हो रही थी तो उन्होंने अपने वाउज लेते समय माइक में वाउज लेते ना कि आई टेक अ वाउ दैट आई विल सर्व इन द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद इन द मूड ऑफ, उन्होंने वो माइक पे बोला, जनरली इतना बोलते इन द मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, उतना ठीक है। तो उन्होंने एक मिनट तक सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, एक मिनट तक सर्वेंट सर्वेंट चल रहा था। तो वो लिस्ट में उनका जो दीक्षित नाम कुछ और उनको मिलने वाला था, तो क्योंकि उन्होंने इतनी बार सर्वेंट सर्वेंट बोल दिया तो महाराज ने बोला योर नेम इज दास अनुदास अनुदास। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है ये बाहर जन साधारण इतने सही तरीके से उसको नहीं अपने जीवन में समझते। अब जैसे हम लोग जब एक दूसरे को ईमेल भी करते हैं इस्कॉन में भक्त, तो नीचे लिखते हैं योर सर्वेंट। अब बाहर यदि आप किसी को लिखो योर सर्वेंट गलती से भी, जैसे हमारे एक भक्त वो अपने माता पिता को जब चिट्ठी लिखे पहली बार तो उन्होंने लिखा योर सर्वेंट, उनके माता पिता तुरंत बाकी पूरी चिट्ठी में कुछ ध्यान में नहीं आया उनको, तुरंत उन्होंने फोन करके बेटा ये तू नौकर क्यों बोल रहा है अपने आप, सर्वेंट का यदि ट्रांसलेशन करें नौकर, आपका नौकर, अरे हमारे घर में कितने सारे नौकर है, तू नौकर, अरे तू तो राजा बेटा है। तो ये एक जो सिद्धांत है, ये कॉन्सेप्ट समझना, इसे हम यदि भक्तों के संग में जब जो इस्कॉन की भाषा होती ना सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट फॉलन यू नो लोअर देन वर्म इन द स्टूल, ये सब तो ये सब से बहुत वो एक उसको लेवल चाहिए वो समझने का कि हाँ ये ह्यूमिलिटी एग्जिबिट कर रहे हैं। लेकिन बाहर जाकर हम किसी को बोल दें बात तो अचानक हो तो फिर वहां पे क्रांति मच जाएगी। तो अर्जुन वही सोच रहे थे कि मैं जो त्याग दिखा रहा हूं, बहुत बड़ा त्याग अर्जुन का, ये जो मैं त्याग दिखा रहा हूं युद्ध नहीं करने का, मतलब मैं दे रहा हूं फ्री में लॉटरी ले ओ इन सबको। तो अर्जुन ये सोच रहे थे कि सामान्य लोग वो मेरे त्याग को नहीं समझ पाएंगे, वो सराहना नहीं करेंगे मेरी त्याग का, लेकिन कम से कम जो बड़े बड़े महारथी हैं जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, जो साक्षात्कारी हैं, बड़े बड़े महारथी कौन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यहां तक कि कर्ण, हालांकि कर्ण अभी तक रणभूमि में खड़ा नहीं था, लेकिन अर्जुन कर्ण के विषय में भी सोच, यहां तक कि कर्ण, ये सब उनका दृष्टिकोण क्या रहेगा, अर्जुन कितना बड़ा दानवीर, अर्जुन कितना बड़ा बैरागी है, कितना बड़ा त्यागी है। भगवान कह रहे हैं इस भ्रम में मत रहना, ये सब जो तुम अपने मन में लिस्ट निकाले हो ना इन महारथियों की, ये सारे महारथी ये सबसे पहले तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे और ये सबसे पहले तुम्हें डरपोक कहेंगे। तो अर्जुन, ये ऐसा होता है ना कि कई बार कोई व्यक्ति किसी एक दृष्टिकोण को पकड़कर कोई डिसीजन लेता अपने जीवन में, है ना, और फिर वो डिसीजन उसने ले लिया और उसके एक मिनट बाद उसको समझ में आता है कि उसने गलत डिसीजन लिया। कई बार होता है हमारे जीवन में कि स्पर ऑफ द मोमेंट हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं, उसे कहते हैं इंपल्सिव होना, और उसके फिर एक सेकंड बाद या एक मिनट बाद हमें समझ में आता, अरे काश मैं, मेरी ये चेतना एक मिनट पहले हुई होती। तो उसी प्रकार से अब इस श्लोक को सुनने के पश्चात अर्जुन के मन में, अरे मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, भगवान तो बोल रहे हैं कि ये महारथी भी मुझे डरपोक कहेंगे, तो उल्टा हो गया पूरा। जो मेरा प्लान था कि लोग मेरा गुणगान करेंगे, तो पूरा उल्टा भगवान सामने रख रहे हैं। तो इससे हम एक और सीख लेते हैं, हमारी कृष्ण भक्ति। जैसे बहुत बार ये बताया जाता है कि अर्जुन जो कुरु सेना के समक्ष खड़े, और हमारी साधना भक्ति भी इस भौतिक संसार के जो विपक्ष हैं, अनर्थ और प्रकृति और मोह माया, इन सब के सामने हम अर्जुन के समान खड़े, तो हमारी कृष्ण भक्ति या हमारी साधना जो है, यदि उसे हम लें, तो जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हमारे सामने भी बहुत से अलग अलग पार्टियां सामने खड़ी, जैसे अर्जुन के सामने खड़ी ना, अर्जुन के भाई, अर्जुन के गुरुजन, अर्जुन के पितामह, ऐसे अलग अलग पार्टियां खड़ी हैं सामने, और अर्जुन के मन में अलग अलग विचार, इनको देखते हुए अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हम ऐसा नहीं कि अकेले पैदा हुए हैं, बहुत कुछ लगेज बैगेज रहता है हमारे साथ। तो हम यदि शुरुआत करें तो सर्वप्रथम जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हमारे स्वयं का एक मत होता है, सभी अपना एक मत लेकर चलते हैं कि मेरे मतानुसार, शुरुआत में तो हम अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि मेरे मतानुसार ये भगवान होने चाहिए, कृष्ण क्यों, मेरे मतानुसार इसका जप करना चाहिए, महामंत्र का क्यों, मेरे मतानुसार ये अलग अलग लंबा चौड़ा लिस्ट रहता है, आई एंड माय ओपिनियन, है ना। तो हमें सर्वप्रथम उसे शरणागत करना होता है, किसे, अपने मत को, वी हैव टू सरेंडर अवर ओपिनियन अन टू कृष्ण। और अक्सर कलयुग में फायदा यह है कि क्योंकि लोग शास्त्र वगैरह इतना जानते नहीं है, धर्म का पालन इतना नहीं, हम बचपन से कुछ किए तो इसलिए ज्यादा कुछ मत होता नहीं है, वैरायटी नहीं है कुछ उसमें, इसलिए ये इतना मुश्किल नहीं होता है अपने मत को सरेंडर करना, क्योंकि उसमें कुछ दम ही नहीं है, हमारे मत में कुछ दम ही नहीं है। तो ये पहली सीढ़ी यदि देखें हमको क्रॉस करने के लिए कृष्ण भक्ति में। इसके पश्चात एक हमारा मत, फिर परिवार का मत, कि परिवार का मत कई बार यदि आध्यात्म छोड़ भी दें, यदि कृष्ण भक्ति छोड़ भी दे, तो परिवार का मत हमारे मत के अनुसार बहुत कम रहता है, है ना? क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन गैप। और घरों में, बहुत से घरों में आप देखो बच्चे बोलते हैं दीवार का कलर ये होना चाहिए, आजकल ये फैशन चल रहा है। पिताजी बोले पैसा कौन देने वाला है? और जो गृहिणी है वो बोलती है रहने कौन वाला है, सबसे ज्यादा मैं ही। तो देखिए एक वॉल पेंट, उसके लिए कितना मतभेद हो जाता है। तो सोचिए कि किसी परिवार में कोई आकर अनाउंस करे कि आज से कांदा लहसुन बंद, सबसे बड़ा वो धक्का लगता है आजकल। चाय कॉफी बंद, कांदा लहसुन बंद, टीवी बंद करो। और केवल बंद नहीं, बाहर घूम रहा है ना भंगार वाला। तो ये सब जो अलग अलग चेंजेस घर के अंदर शुरू होते हैं, जैसे मुझे याद है मैं जब एयरफोर्स ज्वाइन किया था तो हमारी जो दादी इतना खुश हुई, पेड़े वेड़े बाटी और मेरा पोता एयरफोर्स का फाइटर पायलट, वो सबको बोलती कि वो हवाई जहाज उड़ाता है। और फिर बहुत वर्षों पश्चात जब वो पूछ रही थी कि कहां है आजकल, उसकी पोस्टिंग किधर हुई, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान की रहने वाली एक दादी मां का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नौकरी लग गई अब? तो तब तक मैं ज्वाइन कर चुका था। तो ये देखो ये डबल इंपैक्ट, एक तो नौकरी छोड़ दिया और उसके बाद फिर ये, तो उनको तो मेरी बुआ बता रही थी कि ये डाइवल्ज करना कि मैं क्या हो गया हूं, तो ये बोलना भी थोड़ा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में बोलना पड़ा, नहीं तो हार्ट अटैक आने के चांसेस थे। अब देखिए कि विशेष रूप से भारत में चाहे कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भक्ति को इस प्रकार से अपनाए या कोई गृहस्थ आश्रम में भी कृष्ण भक्ति को अपनाए, तो परिवार का एक जो मत होता है, और हमने इसकी चर्चा शायद पिछले हफ्ते भी की थी, भक्ति चारू महाराज, यदि आपने उनके विषय में सुना होगा, भक्ति चारू महाराज श्रील प्रभुपाद ने उन्हें एक साथ हरिनाम ब्राह्मण सन्यास, और वो पाश्चात्य देश में बहुत पढ़े लिखे, अमेरिका में पढ़े लिखे, तो उनके पिताजी, सोचिए कितना बड़ा धक्का कि अमेरिकन रिटर्न, अब क्या हो रहा है इसको। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि देखिए आपका मत ये है कि मैं ये जो भी सन्यास न लेकर आपकी तरह मैं गृहस्थ का जीवन बिताऊं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे सन्यास लेने में फायदे कितने हैं। तो उन्होंने सबसे पहला फायदा बताया कि देखो मैं आपका पुत्र हूं और आप ये नहीं चाहोगे कि मैं अपना सारा प्रेम आपको दूं? बोले हाँ। तो यदि मेरा विवाह हो जाता है तो वो डिवाइड हो गया ना प्रेम, मेरा सारा प्रेम आपको कैसे मिलेगा? और फिर सेकंड उन्होंने प्रपोजिशन रखा कि देखिए, एक पुत्र होने के नाते मैं आपकी सेवा, ये जो आपने मुझे शरीर दिया है, ये जब तक ये शरीर है तब तक तो मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा ना। अब मरने के बाद तो मैं और किसी का पुत्र हो जाऊंगा अगले जन्म में, तो फिर फाइल चेंज हो गई ना। अब फिर मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया, फैमिली चेंज, किसी और के लिए करना होगा। लेकिन यदि मैं कृष्ण भक्ति में लगता हूं तो जो मेरे कृष्ण भक्ति के स्पिरिचुअल क्रेडिट्स हैं वो केवल आपको न इस जन्म में बल्कि अनगिनत जन्मों में इटर्नली नित्य रूप से मिलेंगे। अर्थात मैं आपकी सेवा न केवल इस जन्म में कर पाऊंगा बल्कि आने वाले कितने जन्मों में मैं आपकी सेवा, आप कहीं पर भी रहो मेरे स्पिरिचुअल क्रेडिट्स आपको पहुंचते रहेंगे। होता ना, मनी ऑर्डर पहुंचता रहेगा। हालांकि ये दूसरा सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन कृष्ण भक्ति में एक और एक मत सामने आता है जिसको हमें जूझना पड़ता है। अच्छा, इसके पश्चात समाज क्या कहेगा? ये माला झोली हाथ में ले लिया, अरे तिलक इतना लंबा तिलक लगाते हैं क्या? अरे हम भी मंदिर जाते हैं थोड़ा सा ही, और अभी सुबह सुबह ठीक है, अभी ऑफिस में, कई हमारे भक्त बंबई में ऑफिस में लंबा चौड़ा तिलक लगा के जाते हैं, और वो लोग यदि किसी दिन तिलक न लगाएं तो बाकी लोग चिंता करने, अरे आज मंदिर जाके नहीं आए। तो समाज, जैसे मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र, जब वो इस प्रकार से मंदिर ज्वाइन किए तो उनके घर परिवार वाले, एक ही उनका वो चैनल चल रहा था, एक ही क्या कि समाज क्या कहेगा। इन्होंने उनसे पूछा कि आप मेरी खुशी चाहते हो कि समाज की खुशी चाहते हो? आपने पूरे डिस्कशन में ये नहीं पूछा कि मेरी खुशी किसमें? तो उनका एक रियलाइजेशन ये था, आई वॉज सिंपली यूज्ड टू प्लीज द सोसाइटी, आई वॉज नॉट कंसिडर्ड एज यू नो अ फैमिली मेंबर हु ऑल्सो हैज हिज ओन ओपिनियंस एंड लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। तो अक्सर ये एक दुर्भाग्यवश देखा जाता है हमारे समाज में कि समाज को प्रसन्न करने के लिए, जैसे एक ब्रह्मचारी हमारे जो बने, तो उस समय बहुत परिवार की ओर से अप्रोर था कि समाज में नाक कटा दी, लोग पूछते कहां है लड़का, सर मंडवा के ब्रह्मचारी बन गया, कैसे किस मुंह से बोले। तो दूसरा लड़का वो लड़की लेके भाग के शादी किया जिसपे बहुत गर्व था उनको, तो अब आके बोले तुमने तो बहुत अच्छा किया। उसने तो थोड़ी बहुत जो बची थी वो भी काट दी ना। तो समाज का मत, हमारे स्वयं का मत, परिवार का मत, समाज का मत, अर्जुन ये सभी सोच रहे हैं ना अभी कि समाज क्या कहेगा, या फिर ये सारे परिवार वाले ये लोग सब क्या कहेंगे, ये सब कुछ सोच रहे हैं अर्जुन। परंतु कृष्ण भक्ति यदि हमें सही मायने में करनी है तो अंततः हमें भगवान का क्या मत है ये कभी कोई नहीं पूछता। जैसे कि हमारे जयद्वीप महाराज को ये प्रश्न पूछा था कि इफ आई बिकम अ फुल टाइम डिवोटी ऑफ कृष्णा देन हु विल सर्व माय पेरेंट्स। उन्होंने उत्तर में कहा एंड हु इज योर ओरिजिनल पेरेंट। राधा एंड कृष्णा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सही मायने में उनको हम क्या दे सकते हैं या पूरे समाज को हम क्या दे सकते हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे स्वयं के मत और भगवान के मत के बीच में अक्सर ये परिवार समाज इत्यादि इन सब के मतों से हमें गुजरना होता है और ये एक प्रकार की परीक्षा है एक साधक के लिए, एक साधक के जीवन में, जो कि अर्जुन के सामने अब ये परीक्षा की घड़ी। लेकिन अर्जुन का सौभाग्य ये था कि अर्जुन के डायरेक्ट काउंसलर कृष्णा, सोचिए, और वो भी कोई को काउंसलिंग नहीं था, वहां पे 1-to-1 काउंसलिंग चल रहा था। तो ये अर्जुन का सौभाग्य था। तो हमारे इस ये जो एपिसोड अर्जुन का चल रहा है इससे हम हमारी कृष्ण भक्ति में ये सीख लेते हैं। अब भगवान ने कहा भयात रणात उपरत। ये उपरत शब्द भगवान ने जो इस्तेमाल किया इसका अर्थ क्या है, तो इसके चार अर्थ हमारे आचार्य ने बताए हैं। सर्वप्रथम उपरत का अर्थ हुआ है जो रण से भागा हुआ सैनिक उपरत। दूसरा अर्थ है जो भागा नहीं है लेकिन कोई उत्साह नहीं, लड़ने का कोई उत्साह नहीं, रणभूमि पर है लेकिन कोई उत्साह नहीं लड़ने का। तीसरा अर्थ जो निष्क्रिय, वो रणभूमि से भागा भी नहीं है, उसके अंदर युद्ध करने का उत्साह भी है लेकिन वो जानबूझकर निष्क्रिय। जैसे कि प्रथम अध्याय में मेरे ख्याल से 45वां श्लोक है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें अर्जुन कहते हैं यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तर राष्ट्र रणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं यदि माम अप्रतिकारम, यदि भगवान अर्जुन का प्रस्ताव अप्रतिकार, मैं बिना प्रतिकार करे अशस्त्रम शस्त्र को छोड़ दो और शस्त्र पाणय जो शस्त्र हाथ में लिए हैं धार्तर राष्ट्र रणे हन्यु धृतराष्ट्र के पुत्र उनके हाथ मारा जाऊं कैसा रहेगा। देखो अर्जुन का ये, अर्जुन सोच रहे थे कि मैंने कितना अच्छा प्रपोजल रखा है, तो वो निष्क्रिय कि शस्त्र को जानबूझकर छोड़ देना और अगले शत्रु पक्ष के हाथों मर जाना। वो कहते हैं धार्तराष्ट्र रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत, इससे क्षेमतर बात और क्या हो सकती, इससे सराहनीय बात और क्या हो सकती। तो भगवान उसे याद करते हुए भी अर्जुन को कह रहे हैं उपरत, और अंततः भयभीत, जो डर के रणभूमि में रहे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम जो ये बता रहे हो ना निष्क्रिय हो जाओगे, जो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं अपने शस्त्र अशस्त्रम बन जाऊंगा, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें भयभीत जानेंगे ये लोग, आज के जो श्लोक के अनुसार तुम्हें लोग डरपोक मानेंगे और ये तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि रणभूमि के नियमों के अनुसार यदि कोई योद्धा डर जाए तो उसके ऊपर कोई प्रहार नहीं करता, कोई क्षत्रिय यदि आंख बंद कर ले डर के मारे तो डर गया इसको छोड़ो अगले वाले को। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये बड़े बड़े जो भीष्म द्रोण कृपा ये तुम्हें डरा हुआ देखकर तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करने वाले, तुम्हें लगता तुम्हें माला पहनाएंगे बस तुम्हें डरपोक बोल के जाओ, ये भी वैसा ही रहा बाकी की तरह। इसलिए अर्जुन के विषय में विशेष भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन अपने जीवन में आज तक कभी डरे नहीं, किसी भी बड़े बड़े युद्ध से कभी डरे नहीं। जैसे कुरुक्षेत्र के इस युद्ध से पहले रुक्मी महाराज भीष्मक के पुत्र रुक्मी वो अर्जुन के पास आए एक अक्षौणी सेना लेकर, कितना एक अक्षौणी सेना लेकर अर्जुन के पास आए और बोले अर्जुन को एकदम गहरी आवाज में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम डरो मत, मैं लाया हूं सेना, चलो लड़ते हैं। तो अर्जुन जिन्होंने ये पूरी कुरु सेना को पहले वो महाराज विराट के नगर में हरा दिया था अकेले, वो रुक्मी की तरफ देखते हैं, तो अपनी एक अक्षौणी सेना लाकर मुझे बोल रहे हो कि डरो मत भीऊ नको। तो अर्जुन को हंसी आया, अर्जुन जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन ने अपना बायोडाटा निकाला कि मैं पांडु का पुत्र, मैं द्रोणाचार्य का प्रमुख शिष्य, ये गांडीव और पशुपात अस्त्र जो मुझे शिवजी द्वारा मिला गया, अग्नि द्वारा रथ मिला गया और रथ के सारथी कृष्ण, ये सब कुछ होने के बाद क्या मुझे कोई डर होगा? तुम्हारी एक अक्षौणी सेना क्या है वो? तो अर्जुन ने कहा ये उसी के समान है जैसे कि एक छोटा सा कीट वो हाथी को बोलता है व्यू नको। एक बार जंगल में दो चींटियां इवनिंग वॉक पे थी, तो सामने से हाथी भी अपना इवनिंग वॉक पे निकला था, तो एक चींटी दूसरे से कहती कुचल डाल साले को। दूसरी कहती छोड़ बेचारा अकेला है। तो रुक्मी उसी प्रकार से वो आया एकदम हाथी के सामने चीटी, डरना मत मैं हूं। तो भयभीत श्रील प्रभुपाद उन्होंने 1973 में एक अपने प्रवचन में इसी श्लोक पे उन्होंने प्रवचन दिया था, भयातृणात् उपरतः। उन्होंने प्रवचन में बताया था कि एक 300 वर्ष पहले भी क्षत्रिय को किस तरीके से देखा जाता था, क्षत्रिय राजाओं को, क्षत्रिय सैनिकों को किस प्रकार से देख। तो उन्होंने कहा 300 वर्ष पहले औरंगजेब के सेनापति जिनका नाम था यशोमंत सेन, तो ये यशोमंत सेन एक युद्ध में वो घायल होकर जो उनका बेस कैंप होता है वहां पर लाए गए, तो वहां पर उनकी जो पटरानी वो थी बेस कैंप में, वो भी क्षत्राणी। तो उन्होंने मतलब वो उपचार वगैरह के लिए वो सब व्यवस्था वहां पर की थी, तो देखा कि इनके पति यशोमंत सेन आए घायल अवस्था में और इन्होंने उनकी घायल अवस्था को देखकर कहा कि नहीं बाहर निकालो, ये लायक नहीं है उपचार के। पत्नी ने अपने पति के घायल अवस्था को देखकर कहा ये लायक नहीं है, इसको अंदर मत लेना। वापस ले जाओ इसको रणभूमि पे। क्यों? क्योंकि उसको चोट पीठ पे लगी थी। वो सेनापति को चोट पीठ पे लगी थी तो इसने कहा एक क्षत्रिय को कभी भी पीठ पे चोट लगी नहीं सकती, इसको पीठ पे चोट लगी क्योंकि इसने पीठ दिखाई होगी। एक क्षत्रिय को चोट हर समय छाती पे लगी, अगर छाती पे इसको चोट लगती तो मैं इसका उपचार कर, ले जाओ इसको कायर कहीं का, ये स्टैंडर्ड था कि एक क्षत्रिय यदि घायल भी होगा तो सामने की तरफ कोई चोट लगेगी, पीछे कभी नहीं। आजकल तो हम कल्पना में नहीं कर सकते कि क्षत्रिय का ऐसा स्टैंडर्ड। तो यहां पर भगवान सोच लिए, अर्जुन तो पूरा पीठ कर कर जाने की सोच रहे थे और ये सब सारे जो उपरत शब्द के अर्थ भगवान अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, ये दो पैसे का भी नहीं है, कोई कोई कीमत नहीं है इसकी। अब अर्जुन यदि ये प्रश्न पूछे, या उस समय तो ये हुआ नहीं था, लेकिन मान लीजिए कि ये प्रश्न कोई पूछे कि भीष्म पिता ने भी युद्ध से पलायन किया था, अर्थात उन्होंने शस्त्र डाल दिए थे भीष्म पितामह ने, हाँ, युद्ध के बीच में, कितने दिन पश्चात? 10 दिन पश्चात। युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। 10 दिन पश्चात भीष्म पितामह शस्त्र छोड़ दिए। क्यों? तो क्या भीष्म पितामह भी, उन्हें लोग कहेंगे कि वो भीष्म पितामह डर गए? नहीं, भीष्म पितामह की सराहना हुई उसमें, बहुत से कारण हैं। आज बहुत विशेष भीष्म पंचक भी है, इसलिए भीष्म पितामह किन कारणों के वजह से उन्होंने शस्त्र वहां छोड़े और युद्ध उन्होंने अपने से, अपनी स्वेच्छा से युद्ध नहीं करना ठान लिया। तो सर्वप्रथम उन्हें कोई डरपोक नहीं कहेगा, क्योंकि उस घटना से पूर्व लगातार 10 दिनों तक वे अपना पराक्रम दिखा रहे थे। तो यहां पर अंतर क्या है? अर्जुन छोड़ के जो जा रहे हैं, अर्जुन ने अब तक गांडी उठाया ही नहीं, उठाने से पहले छोड़ दिया है। लेकिन भीष्म पितामह ने 10 दिन तक ऐसा पराक्रम दिखाया कि सारे पांडव, सारे पूरी जो पांडु सेना हिल चुकी थी भीष्म पितामह के पराक्रम से। तो कोई भीष्म पितामह पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि भीष्म पितामह 10 दिन बाद युद्ध करना छोड़े भय के कारण, नहीं, क्योंकि 10 दिन तक उन्होंने अपना एक्सपर्टीज दिखा दिया था। दूसरा कारण, शिखंडी, यदि आप महाभारत का थोड़ा इतिहास जानते हो तो शिखंडी ये पिछले जन्म में जो अंबा था थी, और ये श्राप भीष्म पितामह को इस अंबा के द्वारा कि शिखंडी के रूप में ये अंबा जब आएगी तभी भीष्म पितामह को शस्त्र छोड़ने होंगे, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि भीष्म पितामह उसे शिखंडी नहीं देख रहे थे, भीष्म पितामह क्या देख रहे थे? एक स्त्री देख रहे थे, और मैं स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा, ये भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि ये शिखंडी नहीं, ये अंबा है, और मुझे ये अंबा के रूप में दिख रही तो मैं इसके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह ने ही अर्जुन को कहा था कि अर्जुन तुम मुझ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हें यदि मुझ पर विजय प्राप्त करना है तो वो शिखंडी को लेके आओ जिसने मुझे शाप दिया था, तब जाकर तुम कुछ कर पाओगे। तो यह प्रस्ताव स्वयं भीष्म पितामह का था, इसलिए उन्हें डरपोक नहीं कह सकते। और तीसरा कारण, शिखंडी भी बाण चला रहा था लेकिन शिखंडी के जो बाण थे, एक भी बाण भीष्म पितामह पर एक खरोंच भी नहीं ला सका शिखंडी का, और क्योंकि शिखंडी सामने खड़ा तो भीष्म पितामह ने अपना जो प्रहार है अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया, तब जाकर अर्जुन भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार कर सके और वो बाणों की शैया भीष्म पितामह के लिए अर्जुन ने बनाई। और अंतिम कारण, उन्हें उनके जो पिता शांतनु, भीष्म के जो पिता शांतनु, उनसे दो वर मिले थे। पहला वर इच्छा मृत्यु, और दूसरा वर भीष्म पितामह को मिला था कि उन्हें कोई भी रणभूमि पर नहीं मार सकता, तो उन्हें मरने का कोई डर ही नहीं था। कोई रणभूमि से डर के क्यों भागेगा, मृत्यु के भय से ना। तो ये अंतिम कारण कि भीष्म पितामह को जो दो वर मिले थे जिसके वजह से वो तो निडर थे। सोचो, इच्छा मृत्यु का वरदान और युद्ध में कोई उन्हें मार नहीं सकता रणभूमि पर। तो भीष्म पितामह का उदाहरण कोई सामने नहीं रख सकता, या अर्जुन और भीष्म पितामह की कोई तुलना नहीं हो सकती। कि अर्जुन जो अभी रण का पलायन कर रहे हैं और भीष्म पितामह ने जो 10 दिन बाद किया, नहीं, दोनों में इतने अंतर हैं। अब भगवान ये कह रहे हैं, या भगवान ने कहा कि सामान्य लोग अर्जुन तुम्हें डरपोक तो कहेंगे ही, उसके साथ साथ ये महारथी, तो अर्जुन के लिए जो पूजनीय ये कुरुश्रेष्ठ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, तो अर्जुन इस अपेक्षा में थे कि ये तीन मेरी सराहना करेंगे, मेरे त्याग की सराहना ये तीन करेंगे। भगवान बोल रहे हैं नहीं, ये ही तीन सबसे पहले उंगली उठाकर कहेंगे कि डरपोक अर्जुन, क्योंकि भीष्म पितामह ने युद्ध से पहले दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन वहां पर यदि एक योद्धा न हो तो तुझे कोई तो आशा है जीतने की, यदि वहां पे अर्जुन नहीं हो तो तेरी कोई आशा है जीतने की दुर्योधन, लेकिन क्योंकि वहां पे अर्जुन खड़ा है और कोई भी ना हो, तेरा कोई होप्स नहीं जीतने का दुर्योधन, भूल जा। तो ये बात भीष्म पितामह ने दुर्योधन से युद्ध से पहले कही थी। तो सोचो, इतना कॉन्फिडेंस भीष्म पितामह को अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन, भीष्म पितामह देख रहे हैं कि अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं रणभूमि, तो भीष्म पितामह क्या सोचेंगे। द्रोणाचार्य ने कब घोषणा कर दी थी, जब विराट के नगर में उन्होंने गऊओं को चुरा लिया था और अर्जुन नपुंसक के रूप में, अकेले नपुंसक के रूप में जब अर्जुन वहां पर इन सब को हराए, हमने इसकी चर्चा की थी कि हराने से भी पहले अर्जुन ने दो कदम लिए, द्रोणाचार्य समझ गए अर्जुन है, और उस समय द्रोणाचार्य इतने गर्वित होकर, क्योंकि द्रोणाचार्य का सबसे विश्वसनीय शिष्य, तो द्रोणाचार्य इतना गर्वित होकर वो दुर्योधन कर्ण इत्यादि सबको कह रहे हैं कि हाँ, ये है मेरा शिष्य अर्जुन, और ये बताएगा कि असली धनुर्धर कौन होता है। और कृपाचार्य ने भी युद्ध से पहले कर्ण को कहा था, कर्ण वो बहुत डंका पीट रहा था अपना, तो कृपाचार्य ने कर्ण को कहा कि कर्ण तुम थोड़ा जाके डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारी मति फिर गई है, तुम जानते नहीं अर्जुन कौन है। तो ये तीनों युद्ध से पहले इन्होंने अर्जुन का इतना गुणगान किया था और अर्जुन का इंट्रोडक्शन पूरे कुरु सेना में इतना दिया था कि बाकी लोग थोड़ा डर गए थे, लाल पीले हो गए थे कि ये अर्जुन के ये लोग इतना गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि यदि तुमने वो सब नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं तुमको कि ये तीन, तुम जितनी अपेक्षा रख रहे हो इन तीनों के ऊपर, ये तीन तुम्हारा इतना गुणगान किए हैं और तुम इनकी नाक कटोगे। तो भगवान देखिए उसको बोलते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अगर आजकल की भाषा में। भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य, ये सब। तो इसलिए ये पूजनीय तीन श्रेष्ठ अर्जुन के कुरुश्रेष्ठ। अब अंत में भगवान ने आज के श्लोक के द्वारा कौन सा संदेश हमको दिया है कि अपने स्वार्थ को बड़ों के लिए बलिदान करना। यहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और साक्षात भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, परंतु यदि अर्जुन ये सोचे कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान ये बता रहे हैं कि कई बार, हाँ इसका अर्थ ये नहीं, बहुत बार कलयुग में लोग ये सब उदाहरण लेते हैं कि देखो बड़ों की बात माननी चाहिए, और उदाहरण किसका देते, जैसे कैसे कैसे रामचंद्र जी ने दशरथ की बात मानी थी। कलयुग के कुछ पिता ऐसे बोलते हैं, कैसे रामचंद्र जी ने दशरथ की बात मानी थी। तो बाप भी दशरथ जैसा होना चाहिए पहले। और दूसरी शिक्षा भगवान दे रहे हैं संदेश, बड़ों की अपेक्षाओं को पूरा करना, अपने स्वार्थ का बलिदान और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना, क्योंकि उनकी अपेक्षा में ही जो अनुज हैं उनका स्वार्थ छिपा है। तो हम इसमें कुछ उदाहरण लेंगे शास्त्रों से कि कैसे अपने बड़ों, अपने वरिष्ठ जनों के लिए इन व्यक्तियों ने बलिदान किया और इसी में इनका स्वार्थ, असली स्वार्थ छिपा था। सर्वप्रथम भीष्म पितामह, कौन जानता है क्या बलिदान इनका था? अब देखिए, इनके पिता शांतनु वो आकर्षित हो गए थे सत्यवती, सत्यवती से आकर्षित हो गए थे, और सामने सत्यवती के जो पिता, उन्होंने ये रखा कंडीशन कि मैं एक ही कंडीशन पर मेरी बेटी को दूंगा, उसका हाथ शादी में, कि इसका पुत्र वो राजा बने, क्योंकि भीष्म उस समय उनका नाम था देवव्रत, कि वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे शांतनु, तो ट्रेडिशन के अनुसार वो राजा बनने वाले थे। तो महाराज शांतनु, उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ, तो वो आ गए, रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, सत्यवती के पिता का प्रपोजल रिजेक्ट करके आ गए। लेकिन भीष्म पितामह ने देखा कि उनके पिता बहुत चिंतित लग रहे हैं, तो वो जाकर पता किए कि क्या बात थी, और वो जाकर फिर उनकी जो भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि मैं ये भीषण प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं, जो कोई उस राजगद्दी पर बैठेगा मैं उसका सेवक रहूंगा, और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। तो उन्होंने ये व्रत लिया, ये प्रतिज्ञा ली, तो ऊपर से देवतागण वो पुष्पों की वर्षा करने लगे, इसलिए उन्हें तब नाम मिला भीष्म। तो देखिए, अपने पिता, सोचिए थोड़ा रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, अपने पिता के विवाह के लिए पुत्र ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। कलयुग में थोड़ा कॉमन है आजकल। जैसे पूछा जाता है ना कि वेस्टर्न कल्चर में शादी से पहले बच्चे हो जाते हैं, तो पूछा गया कि ये वेस्टर्न कल्चर में शादी से पहले जो बच्चे हो जाते हैं इसका फायदा क्या है? हाँ, शादी में टेबल कुर्सी लगाने के काम आते हैं। अपने ही है ना, इन हाउस लेबर। तो भीष्म पितामह, और इसकी चर्चा हमने की थी कि भीष्म पितामह जब उन्होंने ब्रह्मचारी बनने की प्रतिज्ञा ली, तो उस जमाने में तो ब्रह्मचारी बनना बहुत कॉमन था, कलयुग में तो बहुत रेयर है। हाँ, कलयुग में कोई अगर ऐसी प्रतिज्ञा लेता है तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हो सकती है, लेकिन उस जमाने में तो बहुत कॉमन था ब्रह्मचारी कोई बन रहा है। क्यों भीष्म पितामह के ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई? क्योंकि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हस्तिनापुर के राजमहल में रहने वाले थे, कहीं जंगल के किसी आश्रम में नहीं। तो राजमहल में राजसी ठाट बाट के बीच में ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना, ये बहुत बड़ा उनका क्रेडिट था। इसलिए उनकी जो प्रतिज्ञा उसे भीषण प्रतिज्ञा बताई गई। तो भीष्म पितामह का बलिदान अपने पिता के लिए। महाराज प्रियव्रत, ये नारद मुनि के ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग ले रहे थे, बीटी ट्रेनिंग। सोचो, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग इनकी चल रही थी, नारद मुनि ओवरऑल जो ब्रह्मचारी ट्रेनर, सोचे नारद मुनि जैसे काउंसलर ट्रेनर हो उनके अंडर में, और जो इनके पिता, क्या नाम था, प्रियव्रत, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु आए प्रियव्रत को लेने के लिए और उनकी शादी कराने के लिए, राजा बनाने के लिए। ब्रह्मा जी आए, स्वयंभू मनु आए, ये सब आए, और उस ये लोग सब अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रियव्रत, वो फिर से उन्होंने राजगद्दी संभाली। तो ये महाराज प्रियव्रत का उदाहरण। प्रभु श्री रामचंद्र कि उनका राज्याभिषेक होने वाला था, और उनके पिता, हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, कैकेयी, कैकेयी ने ये रामचंद्र जी को सुनाया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा, राज्याभिषेक तो भूल जाओ, तुम्हें वन में जाना होगा। तो प्रभु श्री राम ने अपना सब कुछ बलिदान कर बड़ों की जो आज्ञा प्रभु श्री राम ने मानी, ये उनका उदाहरण। और भागवत में उदाहरण परशुराम जी का है, एक बहुत रोमांचक कथा है 11वें स्कंद में। परशुराम जी के पिता जमदग्नि, और परशुराम जी की माता का नाम था रेणुका। तो जमदग्नि वो बहुत बड़े तपस्वी और बहुत ही विद्वान। तो हुआ क्या, एक दिन जमदग्नि वो एक यज्ञ अनुष्ठान किए, और उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका से कहा गंगा लेकर, गंगा का पानी लेकर आओ। तो वो गंगा के तट पर गई गंगा का पानी लेने के लिए घड़े में। तो गंगा पर उन्होंने, रेणुका ने देखा कि एक गंधर्व अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं। तो मन में उस गंधर्व के प्रति एक मिनट के लिए थोड़ा सा आकर्षण इनके अंदर आया, और वो थोड़ा लेट हो गई, एक मिनट लेट हो गई उसके वजह से। तो जमदग्नि को पता चल गया, देखिए उनका टेक्नोलॉजी देखिए। तो जमदग्नि, इनको पता चल गया कि मेरी पत्नी एक मिनट लेट क्यों आई, क्योंकि उसके मन में वो गंधर्व के प्रति थोड़ा आकर्षण हुआ। तो तुरंत जमदग्नि ने अपने पुत्रों को कहा खत्म कर दो इसको, खत्म, सेंटेंस टू डेथ। तो बाकी सब की क्या बोल रहे, ना खत्म कर दो। तो कोई तैयार नहीं हुए, बाकी पुत्रों में से कोई तैयार नहीं हुआ, परशुराम जी वो तैयार हुए। परशुराम जी ने, क्योंकि बाकी पुत्र तैयार नहीं हुए, तो जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा कि इनको भी खत्म करो और मां को भी खत्म करो, डबल इनको भी पनिशमेंट। तो परशुराम जी ने अपने भाइयों को भी खत्म कर दिया और रेणुका उनकी जो मां है उनको भी मार दिया। क्योंकि परशुराम जी जानते थे कि मैं जब ऐसा करूंगा तो मेरे पिता बहुत प्रसन्न होंगे मुझ पर। तो जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने परशुराम जी से पूछा अब तुम मांगो क्या वर मांगते। उन्होंने कहा इनको पुनः जीवित कर दो। उन्होंने ये वर मांगा, वो जानते थे कि मुझसे पूछेंगे क्या वर मांगते। मैंने उन्होंने सोच रखा था कि ये वर मांगेंगे, इन्हें पुनः जीवित कर दो और इनके अंदर वो स्मरण शक्ति मत रखो कि इनको किसने मारा था। तो ये परशुराम जी ने वरदान जमदग्नि से मांग लिया। लेकिन यहां पर ये बताया जाता था कि उन्होंने जमदग्नि अपने पिता की ऐसी आज्ञा का पालन क्यों किया, क्योंकि उनके पिता उस तरह के थे। प्रभु श्री राम ने दशरथ के ऐसी आज्ञा का पालन क्यों किया, क्योंकि दशरथ उस, ये जानना जरूरी है, नहीं तो जैसे हमने चर्चा की कि बहुत से ये ऐसे उदाहरण देखो, देखो परशुराम जी क्या क्या किए, रामचंद्र जी क्या क्या, भीष्म पितामह, हालांकि उनका उदाहरण नहीं लेते आजकल ज्यादा, भीष्म पितामह। तो ये सारे उदाहरण शास्त्रों में जिन्होंने अपने स्वयं का कुछ मूल्यवान चीज बलिदान किया, अपने जो वरिष्ठ जन हैं, जो अग्रज हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, और जब उन्होंने ये किया अब जो बलिदान, उस समय उसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा था, है ना। आजकल यदि कोई काउंसलर को जाके पूछे कि रामचंद्र जी ने सही किया, अरे क्या सही किया, वो एक कैकेयी ने कुछ बोल दिया उसको दो थप्पड़ मार के बिठा देना चाहिए था, चुप करो तुम नहीं। लेकिन उसके वजह से, वो बलिदान के वजह से कितनों का उद्धार हुआ, यदि ये सब हम आगे की क्रियाओं को देखें तो होता क्या है कि जब बोलते हैं ना कि बड़ों की बात सुनो, बोलते हैं ना कि बड़ों की बात सुनो, जब बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते और बाद में फिर पछताते हैं, तो बड़े बोलते हैं ना यदि मेरी बात सुनी होती ना आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी। लेकिन खैर बड़े भी ऐसे होने चाहिए जैसे हमने चर्चा की, तब जाकर वो ऐसी हालत नहीं होती, तब जाकर वो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए वो श्रेयस्कर था। इसलिए भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि अर्जुन ये बड़े बड़े जो महारथी तुम्हारे वरिष्ठ गुरुजन जो हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सारे वरिष्ठ, इनकी इच्छा है कि तुम युद्ध करो, और तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर जब इनकी इच्छा पूरी करोगे तब आगे चलकर तुम्हें समझ में आएगा कि ये तुम्हारा निर्णय कितना सही था। ये आज के श्लोक का सारांश है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय।